कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है।
रोज बाबा नए नए ढंग से मुरली के अंदर हम सबको बहुत सुंदर शिक्षाएं देते, अपनी ऊंची मंजिल की ओर लिए जा रहे हैं। वर्तमान समय बाबा के संदेश भी हम सब सुनते रहते हैं। अभी भी ब्राजील से, चिल्ली से बाबा के संदेश आए, सुने आप सबने? दादी ने सुनाए उस दिन, कल ही सुनाए थे। तो समय की फास्ट गति का इशारा बाबा ने पिछली मुरलियों में भी दिया है और अभी संदेश से तो ऐसा लगता है कि जैसा अभी हम सबको बहुत फास्ट गति का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने फास्ट गति के लिए कौन सी विधियां सुनाई? समय की समीपता के अनुसार विशेष दो बातें ध्यान पर खिंचवाई, याद है? वो आज की मुरली नहीं मैं पूछ रहा हूँ, संदेश है। मर्जीवा जन्म की दो विशेषताएं अलग, वो तो परोपकारी और बाल ब्रह्मचारी, स्वच्छता और सबके ऊपर उपकार, वो तो आज की मुरली थी। लेकिन संदेश में जो फास्ट गति की बात बाबा ने कही, समय बहुत फास्ट जा रहा है, बच्चे लास्ट देश में बैठे हैं, समय फास्ट जा रहा है, प्लेन भी दिया उनको उड़ने का, लेकिन प्लेन के साथ साथ दो बातें अंतिम पेपर में पास होने के लिए बताई। ध्यान नहीं गया होगा क्योंकि बोर्ड पर नहीं लिखा जाता है। सुना दिया दादी ने फास्ट, हमने सबने सुना, लेकिन जब तक उस पर विचार न किया जाए, फिर से चिंतन न किया जाए, तब तक ध्यान पर नहीं आती वो बात, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा है एक स्टाप, जो बीत गया उसको फुल स्टाप लगाओ। फुल स्टाप लगाने में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पेपर पर पेंसिल रख दो, स्टाप लग जाता है। उसके लिए कोई सीखने और पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो जो बीत गया उसको चिंतन में, सुमिरण में, स्मृति में नहीं लाना, उसको स्टाप लगा दो, बिंदी लगा दो, बीत गई, याद नहीं करना। और दूसरा स्टाक जमा हो, क्योंकि अंतिम समय में बहुत बड़ी लाइन लगेगी अनेक आत्माओं की, तो हर प्रकार का स्टाक, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, सर्व खजानों का स्टाक जमा चाहिए। तो सभी चेक करना, मेरा स्टाक है, भरपूर है? क्योंकि जब कोई बात होती है तो कहते स्टॉक चेक करो, ऐसा ना स्टॉक खाली हो, लोग भूखे चले जाएं। आपके पास अगर स्टॉक नहीं होगा और भिखारियों की लाइन लग जाएगी तो आप उनको क्या देंगे? इसलिए स्टॉक अपने पास फुल चाहिए, जमा चाहिए। और जमा को के खाते को बढ़ाने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी मुरलियां इस बार सुनाई है। कि आपका जमा का खाता कैसे बढ़ेगा, पुरुषार्थ में जमा का खाता कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हम सभी पुरुषार्थी आत्माएं भिन्न भिन्न रीति से विशेष पुरुषार्थ करती रहती हैं। कोई का पुरुषार्थ यथार्थ है, कोई का पुरुषार्थ सहज है, कोई का पुरुषार्थ सर्वोत्तम है और कोई का पुरुषार्थ बहुत तीव्र है। अंतर है तीन चारों में, चारों पुरुषार्थ में अंतर है। यथार्थ पुरुषार्थ, सर्वोत्तम पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ, क्या अंतर है? पुरुषार्थ हम सभी कर रहे हैं, बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं। सवेरे सवेरे उठ जाते हैं तो बाबा ने कहा सवेरे उठ जाते हो, अमृत वेले आकर के बैठते हो, लेकिन बाबा अभी तक देखता है कि याद जो है वो शक्तिशाली नहीं होती, सुस्ती उसमें मिक्स होती है, पुरुषार्थ करते हैं। तो यथार्थ हुआ वो? अगर मान लो आज आप उठ करके आए, 4 बजे उठ के बाबा के बिस्तर छोड़ करके बाबा के कमरे में या हाल में आके बैठ गए और बैठ करके आप सुस्ती का वायुमंडल बना दिया, खुद भी नींद में रहे और आजू बाजू वाले भी आपको देख करके सुस्त हो गए, तो यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कहेंगे ना? सहज पुरुषार्थ है ये, यही सहज पुरुषार्थ है कि आकर के बैठ गए। तो बाबा कहता बच्चे बाबा दिखता है, विदेशियों को यही करेक्शन दिया बाबा ने कि बच्चे आते तो दौड़ दौड़ के हैं, रेगुलर आते हैं, नियम प्रमाण आते हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है, सुस्ती मिक्स होती है, अलबेलापन है। इसलिए बाबा कहता है अटेंशन प्लीज, अटेंशन से बैठो, क्योंकि वही एक समय है जब बाबा बच्चों से डायरेक्ट मिलता है। बच्चों से मिलने के लिए समय रखा है बाबा ने, शक्तियां लेनी है, वरदान लेने हैं, जो इच्छा है, जो मनोकामना है, सब बाबा उस समय पूरी करता है, लेकिन यथार्थ विधि पूर्वक बाबा की याद चाहिए। और वो यथार्थ विधि क्या है पुरुषार्थ की? अपने आप को आत्मा निश्चय करके, पुरुष इस रथ पर विराजमान है, ये है यथार्थ पुरुषार्थ। समझ गए कि मैं आत्मा इस रथ पर विराजमान हूँ, इस देह से अलग हूँ। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो बाबा से उसकी डायरेक्ट बातें होती है, मिलन होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। तो यथार्थ पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं है, सुस्ती नहीं है, ऐसे नहीं नियम पूर्वक आए बैठे और थकावट का अनुभव किया, लेकिन वो खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव, प्यार का अनुभव, आत्मा के जो सर्व गुण है उन सर्व गुणों को एक आत्मा अनुभव करने लगे, शांति के सागर का अनुभव करे, प्यार के सागर का अनुभव करे, सुख के सागर का अनुभव करे, तो ये अनुभूतियां होना भी एक यथार्थ पुरुषार्थ है। तो अगर हम सभी यथार्थ पुरुषार्थी बच्चे हैं तो एक तो आत्मा इस रथ पर विराजमान है, मैं इस देह से अलग हूं, ये वस्त्र हैं, मैं इन वस्त्रों को धारण करने वाली आत्मा इस देह से भिन्न हूं, भ्रकुटी के बीच में हूं, अलग की अनुभूति हो। और जब इतना अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा तो बाबा से डायरेक्ट बातें होने लगेंगी, इसलिए इसमें अलबेलापन और आलस सुस्ती मिक्स न हो, बहुत अलर्ट। और दूसरा सहज पुरुषार्थ क्या है? जिसमें निरंतर आ जाए, क्योंकि सहज जो होगा वो सहज किया जा सकता है, निरंतर किया जा सकता है, ऐसे नहीं अभी अभी किया और अभी अभी टूट गया, अभी अभी याद में रहे और अभी अभी विस्मृति हो गई। सहज पुरुषार्थी माना निरंतर योग, निरंतर बाबा की याद बनी रहे। हम सभी बाबा के बच्चे जिनके जीवन ही योगी जीवन है, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, सहज पुरुषार्थी, ऐसे नहीं लगे कि बहुत मेहनत करता है, बहुत युद्ध करता है, बहुत लड़ता रहता है, बहुत बड़ा त्याग है, तो बहुत ऊंची मंजिल है। अगर मेहनत कर रहे होंगे तो क्या लगेगा आपके जीवन से, चेहरे पर खुशी नहीं है, प्राप्तियों का अनुभव नहीं है, बताता ही नहीं चेहरा कि मुझे कुछ मिला है। मेहनत सहन करने का मार्ग, सहज मार्ग भी सहन करने का मार्ग लगता है, बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, ये त्याग करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। बाबा कहता है ये मेहनत वाला पुरुषार्थी है। बाबा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत माना अलर्ट रहना, ऐसा नहीं अलबेला हो जाएं या लापरवाह हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं, नहीं, अलर्ट हैं, एक्यूरेट हैं, ऑलराउंडर हैं, लेकिन सहज पुरुषार्थी, लगे नेचुरल पुरुषार्थ चल रहा है, मेहनत कर रहा है नहीं, युद्ध कर रहा है नहीं। तो जितना जितना हम ध्यान रखते हैं कि हम भाग्यशाली आत्माएं हैं, प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं, बाबा ने हमको कितनी प्राप्तियां कराई हैं, ढेर सारी, एक एक प्राप्ति का चिंतन करो, स्मृति में रहो। जो बाबा ने इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, जो हम सबको ज्ञान योग धारणा से संपन्न बनाया है, शक्तियां दी हैं, वो अगर हमारे जीवन में आते जाते हैं तो लगता है ये आत्माएं कितनी खुश मिजाज है, खुश नुमा है, मेहनत नहीं, युद्ध नहीं। तो ऐसे सहज पुरुषार्थी जैसे आदादियों के जीवन से हम सभी क्या सीखते हैं, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं, बहुत सहज और नेचुरल, निरंतर है ही योगी आत्माएं, योग लगाने वाले नहीं है, हट करके नहीं बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं बैठ गए आकर के हट से, लेकिन एक सहज चेहरे से, चलन से, व्यवहार से, बोलचाल से लगता है कि इनका योग बाबा से लगा हुआ है। बाबा बाबा ही मुख से निकलता है, मैंपन का नाम निशान नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए कराने वाला करा रहा है, मैं कुछ नहीं करती। सहज पुरुषार्थी है ना दादियां, मेहनत नहीं करती, लेकिन नेचुरल है, अटेंशन है, ऐसा नहीं अलबेलेपन में है, जो है वैसे चल रहा है, अलर्ट है। तो इसलिए हम सभी को यथार्थ पुरुषार्थ करना है, सहज पुरुषार्थ करना है और सर्वोत्तम करना है। सर्वोत्तम पुरुषार्थ क्या है, किसको कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी आत्मा है, बोलो, आपका पुरुषार्थ सर्वोत्तम है, किसको कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी, माता है। निरंतर वाला तो सहज योगी में मैंने लिया, सहज पुरुषार्थी है क्या, अटल अखंड, अच्छा, और उत्तर दो। सर्वोत्तम पुरुषार्थी उसको कहा जाता है जिसकी कथनी और करनी समान हो, ऐसे नहीं कहे मैं योगी हूँ, योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, कहना एक हो और ज्ञान योग से बिल्कुल निल हो अंदर से, दिखावा अलग हो, बोल चाल भाषा अलग हो और अंदर से खोखला हो। अगर कथनी और करनी समान नहीं है कोई की, तो उसको सर्वोत्तम पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ कर रहा है ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम पुरुषार्थ, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ वही है जिसमें हम जो कह रहे हैं वो करें, दूसरों को कह रहे हैं हम भी करें, जो हम करें वही हम कहें। हम नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को कहने का अधिकार हमें नहीं है। हम अगर उसको पालन कर रहे हैं, उन नियमों को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारी उसके अनुकूल धारणाएं हैं, हम समझते हैं इस पर हम चल सकते हैं, हम ही नहीं चल सकते हैं तो दूसरों को अगर हम कहेंगे, मान लो हम ही गुस्सा कर रहे हैं, हम ही चिड़चिड़ेपन में रहते हैं, हमारा ही व्यवहार ठीक नहीं है और हम दूसरों को कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार ठीक होना चाहिए, दूसरों को हम उपदेश दें और हमारा जीवन न हो वैसा, तुम्हारे उपदेश का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता। इसलिए बहुत कहानियां बाबा हम बच्चों को सुनाता है कि पंडित की कहानी तुम्हारे लिए है, पंडित जैसा नहीं बनना। दूसरों को कहो राम नाम कहने से पार हो जाओगे, और जब खुद का टर्न आए तो कहो नैया कहाँ है, ले आओ नाव। तो जैसे दूसरे को कहते हो तुम्हारी उनकी भावनाएं उनको बिठाई है कि तुम राम नाम कहने से पार हो जाओगे, ऐसे तुम्हारी भावनाएं भी हैं। तो बाबा में इतनी हमारी भावनाएं हैं कि हम दूसरों को कहते हैं बाबा तुम्हारे लिए छत्र छाया के रूप में है, बाबा तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा मददगार है, बाबा तुम्हारे हर पल साथ साथ रहता। दूसरों को उपदेश दे देते हैं, हम उतना निर्भय रहते हैं बाबा अगर हमारे छत्र छाया के रूप में है, हम इतना निश्चिंत स्थिति का अनुभव करते हैं। हम बेगमपुर के बादशाह हैं, हमें कोई चिंताएं तो नहीं है क्योंकि बाबा हमारे साथ है। तो दूसरों को कहना कि बाबा आपके साथ है, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल निस्फुरने रहो, कोई फुरना करने कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जब हमारा टर्न आ जाए तो हम कहें भाई क्या करूं, मुझे तो साथी चाहिए, मुझे तो सहयोगी चाहिए, साकार में सहारा चाहिए, बाबा तो ऊपर रहता है। दूसरों को हमने कहा तुम बाबा को छत्र छाया बनाओ, तुम्हारे साथ बाबा कंबाइंड रूप में रहता है, तुम उसका अनुभव करो और मुझे उसका अनुभव न हो। इसलिए सर्वोत्तम पुरुषार्थ हमारा तब है जब हम दूसरों को कहने वाली बात जो हम कह रहे हैं उसका हमने अनुभव पहले किया हुआ हो। करें, क्योंकि बाबा संगम युग पर अपने बच्चों के लिए ही है, सब प्रकार से अपने बच्चों को अनुभव कराता है, लेकिन अनुभव कराने की एक शर्त जरूर है। वो कौन सी? मैं अनुभव उसको कराता हूं जो सच्चे दिल वाले हैं, जिनका दिल बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, जिसके अंदर कोई भी मिक्सचर नहीं है। अगर कुछ भी मिक्स कर लिया, परमत भी मिक्स कर ली, मनमत भी मिक्स कर ली, तो बाबा दूर हो जाता। अगर ये भी मनमत में आ गया कि बाबा तो ऊपर है, मैं तो साकारी हूँ, साकार साथ चाहिए, तो बाबा कहता तुमको साकार ही मदद करेगा, मैं नहीं करता। बाबा बहुत भोलानाथ तो है, लेकिन भोलानाथ के साथ साथ चतुर सुजान है। धर्मराज तो नहीं कहेंगे, चतुर सुजान है, भोले के साथ चतुराई, बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान है। इसलिए चतुर सुजान बाबा जानता है बच्चे के दिल में सच्चाई कितनी है, और जो सच्चे दिल वाले हैं वो अंदर जो है वही बाहर होते हैं। नहीं तो बाहर एक होता है, दूसरा दिखावा, दूसरा भाषा और बोलचाल, दूसरा और अंदर का पुरुषार्थ दूसरा। तो सर्वोत्तम पुरुषार्थी माना अंदर और बाहर एक, सच्चा और साफ, जो कहे वो करे, दूसरों को योग सिखाए लेकिन खुद न कर रहा हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हम कह रहे हैं वो हम करें। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, फरिश्ते स्थिति का अनुभव करना है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। अगर हमने नहीं किया और हम दूसरों को कह देंगे तो केवल आचार्य बनना है, आचरण नहीं है, उपदेशक है वो। तो हम अगर आचरण में ले आए बातें, अपने जीवन में उतार लें, और इसके लिए थोड़ा सा भी अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि हम अपनी इन व्यक्त बातों से परे रहें, हम बाहिमुक्ता में ना आए, तो हम अच्छे अच्छे अनुभव खुद करने लगेंगे। जैसे कल परसों बाबा की मुरली में थी, दो तीन चार प्रकार की महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन पावर। एक तरफ कमजोरियों की महसूसता भी बाबा ने सुनाई, जब तक कोई महसूस नहीं करता तब तक वो बदल नहीं सकता, चाहे जितना ज्ञान दे दिया जाए, चाहे जितनी मुरलियां कोई सुन ले, चाहे जितनी अच्छी अच्छी क्लासेज मिल जाए, लेकिन जब तक उसको खुद की अंदर की महसूसता नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, दिल से महसूस नहीं करता, तब तक वो बदलता नहीं है, संस्कार भी नहीं बदलते। इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर दिल महसूस करे कि मेरी गलती है, मुझे नहीं करना। ये एक महसूसता तो बाबा ने सुनाई, लेकिन दूसरी अनुभूति की महसूसताएं बहुत अच्छी अच्छी सुनाई। आपका ध्यान गया होगा, बाबा ने कहा बच्चे महसूस करो कि मैं बाबा का नूरी रतन हूं, मैं बाबा के नयनों में समाई हुई बिंदु हूं, मैं बाबा के मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि हूं, महसूस करो। मैं बाबा के साकार में भुजाओं के हाथ के कंगन हूँ, हाथ हूँ। मैं बाबा का राइट हैंड हूँ, मैं बाबा के गले की माला हूँ। तो बाबा ने ये सब अनुभूतियां हम बच्चों को सुनाई कि अनुभव करो, अनोखे अलौकिक अनुभव होंगे। तो हमने सुन लिया, सबने महसूस किया। अच्छा, बैठ करके एक घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट मिला एकांत, महसूस किया कि मैं बाबा के नूरी रतन हूँ। सुन लिया सिर्फ, बाबा ने तो कहा अनुभव करो, महसूस करो, इससे बहुत अलौकिक अनुभव होंगे, सुख की अनुभूति होगी। ऐसी मुरली जब हम सुनते हैं तो हम पहले अपने आप से पूछें कि सचमुच मैंने वो अनुभव किया, मैं अलौकिक उस अनुभूति में समा जाऊं, मैं बाबा का नूरी रतन हूँ। नूरी रतन समझने से, सिर्फ ये स्मृति आने से आप उसका स्वरूप बन जाएंगे। नूर में कौन समा सकता है, आंखों में कौन रह सकता है, शरीर तो नहीं रहेगा। कोई कहे मेरे दिल में, मेरे नैनों में मेरा बच्चा रहता है, मेरा पति रहता है, मेरा संबंधी रहता है, रहता है क्या? रहता है, उसकी याद रहती है। तो इन नैनों में, बाबा के नैनों में मैं आत्मा समाई हुई हूँ। आत्मा समा सकती है, बहुत सूक्ष्म चीज समा सकती है, छोटे से छोटी बिंदी समा सकती है। तो मैं इतनी छोटी सी बिंदी हूँ, स्मृति बन जाएगी, अनुभव होने लगेगा कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं उसके मस्तक पर हूँ, मस्तक मणि हूँ। तो ये जो भी हम सुन रहे हैं बाबा की मुरली में, उसका अनुभव करें। ये अनुभव करने का ही समय है, अगर अभी नहीं किया तो कब करेंगे? और बाबा के घर में रह करके भी अगर ये अनुभव नहीं हुए तो दुनिया में तो होंगे ही नहीं। वहां तो बहुत सारे लफड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं, झंझट है, कारोबार है, प्रवृत्ति की अनेक समस्याएं हैं। बाबा के घर में तो सेवा की निश्चिंत हो गए, न खाने की, बनाने की चिंता। बना दिया, अच्छा बनाने की ड्यूटी आपके पास है, बना दिया, खिलाने वाला खिला रहा है, लाने वाला ला रहा है, कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति में तो सब चीज की छोटे से बड़े तक चिंताएं होती हैं। अभी मैं गया था रायपुर, सुना होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी बनी है 3-4 साल से, तो वहां पर भट्टी रखी थी, भट्टी बहुत अच्छी रखी, क्योंकि उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को एक जगह इकट्ठा किया, उनको एक बहुत अच्छा स्थान दिया है बाबा ने ड्रामा में। जब राजधानी बनने वाली थी उसके पहले उसी स्थान पर जहां राजधानी बनी है वहां पर उनको 8 एकड़ जमीन मिली बहुत सस्ते दाम में, जिसकी कीमत अभी करोड़ों की है। राजधानी बनने के बाद बहुत वैल्यू बढ़ गई, सारा शहर आ गया उस साइड में बसने के लिए, लेकिन जब उन्होंने लिया था तो जंगल था। 8 एकड़ जमीन लिया और उन्होंने एक छोटा सा पहले सोचा मैं यहाँ स्थान बनाऊं, हमारा रिट्रीट सेंटर रहेगा। लेकिन जब राजधानी डिक्लेयर हुई और वहीं पर आ गई, 1.5 किलोमीटर आगे पर बस गई आकर के, तो अच्छी रोडें बन गई, अच्छी सारी कॉलोनियां बसने लगी, तो उन्होंने बहुत सुंदर वहां पर हाल बनाया जो छत्तीसगढ़ में पहला हाल है, 2000 सीट का बहुत सुंदर हाल बनाया। और हाल के साथ साथ कुछ रहने के लिए कमरे बना दिए और बहुत अच्छे मॉडल्स बना दिए रोड पर ही, रोड से जाते समय दिखाई देते हैं बहुत अच्छे मॉडल्स। सारी पब्लिक, सारी मिनिस्ट्री उनके पास बिना बुलाए आती रहती है। तो वहां पर उन्होंने खुले स्थान पर भट्टी रखी थी सब छत्तीसगढ़ वालों की। कुमारों की भट्टी अलग थी, माताओं की भट्टी अलग थी, भाइयों की अलग थी। 3 ग्रुप बनाए थे और पहले से 50-60 कन्याओं की वहां ट्रेनिंग चल रही थी 1 महीने की। सारी छत्तीसगढ़ के मुख्य टीचर्स को बुला लिया था, तो मुझे बुलाया था भट्टी कराने। लेकिन यहाँ पर बरसात पड़ गई तो रोड बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई, कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कैसे भी आना तो है, भट्टी इतनी अच्छी हमने अरेंज की है, यहाँ तो बरसात इतनी नहीं है। तो फिर मैं गया ट्रेन से, लेकिन वहां जाते ही मैंने देखा कि कितने बाबा के बच्चे बहुत लगन से, पहला ही आने के दिन ही जिस दिन मैं पहुंचा 1000 भाई लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने 1.5-1.5 दिन की भट्टी, 1.5 दिन भाइयों की, 1.5 दिन कुमारों की और 1.5 दिन माताओं की। दोपहर को आना, शाम को शुरू करते थे, रात को वहीं सोते थे, उसी हाल में सो जाते थे सभी, बाथरूम वगैरह बना दिए थे उन्होंने, और सवेरे 3:30 बजे से भट्टी चलती थी, सारा दिन भट्टी चलती थी, रात को छुट्टी लेकर के भोजन करके 8 बजे सब अपने अपने स्थान पर जाते। तो मैं ये कह रहा था कि बाहर भी भट्टियां होती हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी रहता, ये स्थान तो अलग था, घर गृहस्थ से सब छोड़ करके आ जाते थे, बहुत अच्छे अनुभव करते थे, लेकिन फिर भी शाम का समय होते ही याद आता था, बच्चे याद कर रहे हैं, ये है काम, ये काम है, ये काम है, भागते थे सभी छोड़ छोड़ करके। और बाबा ने हम सबको इस भूमि पर तो तपस्या की भूमि पर बिठाया है, वहां तो इतने लोगों ने आकर के तपस्या की 1.5 दिन की, बहुत लगन थी, बहुत अंदर से उमंग था, 1 मिनट भी कोई एक भी क्लास मिस नहीं करता था। मैं तो ये देख रहा था कि जितनी क्लासे जितने घंटे योग का प्रोग्राम रखा, कोई ने 1 मिनट भी अब्सेंट नहीं किया, बाहर नहीं गए, सबके सब हाजिर, समय पर बैठना, समय पर उठना, समय पर क्लास, समय पर योग, समय पर नाश्ता, सब कुछ समय पर, बहुत अच्छा एक उमंग था। और जैसा डायरेक्शन दिया था कि सब मन और मुख का मौन रखेंगे, तो उनको तो डायरेक्शन दिया, लेकिन उनके साथ साथ मुझे 5 दिन की भट्टी करने का मौका मिल गया, तो मुझे भी किसी से नहीं बोलना है जब सब मौन में है। तो एक बहुत सुंदर वातावरण बन गया, बहुत अच्छी ठंडी हवाएं थी, कोई प्रकार की गर्मी नहीं थी, पंखे की भी जरूरत नहीं थी, बादल थे, को सबने अलौकिक आनंद का अनुभव किया। जैसे बाबा कह रहा है कि समय प्रमाण वैसी योग की ज्वाला प्रज्वलित होनी चाहिए, जिससे आत्मा के पुराने संस्कार दग्ध हो जाएं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अभी हमारी अच्छे वाइब्रेशन मनसा की शक्ति चारों ओर वायुमंडल में फैलनी चाहिए। तो बाबा अभी बहुत इशारा कर रहा है कि अति में सब चीजें जाएंगी, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, दुख अति में जा रहा है, और ऐसे अति के वायुमंडल में आप बच्चों को अपनी श्रेष्ठ मनसा के द्वारा इन्हें सकाश देनी, शांति सुख आनंद अनुभूति करानी। इसके लिए तुम ज्ञान सूर्य स्थिति में रहो, खुद मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके उन आत्माओं को सकाश दो। ये पुरुषार्थ जो है कि मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहूं, उड़ती कला की स्थिति में रहूं, ये पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ है। 4 प्रकार का पुरुषार्थ बताया ना, यथार्थ पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ, सर्वोत्तम पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ। तो वो तीव्र पुरुषार्थ क्या है, जिस तीव्रता से बाबा कहता है उड़ान भरो, आत्मा उड़ करके अपने साकारी वतन से आकारी वतन और मूल वतन की यात्रा करे, सेकंड में इस देह से विदेही हो जाए, तीनों लोकों की सैर करना सीखे। तो ये जो बाबा हम बच्चों को ड्रिल करा रहा है कि सेकंड में उड़ो, सेकंड में इस देहभान को भूल जाओ और अन्य आत्माओं को अपनी मनसा की सकाश दो, शक्ति दो, किरणें दो, आपके वाइब्रेशन से विश्व की आत्माओं का भला हो, कल्याण हो, है इतनी शक्ति मनसा के अंदर कि इधर की बातें उधर की बातें। एक मुरली आज मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ी पहली बार ध्यान पर आई, वैसे तो कई बार पढ़ी है मुरलियां। बाबा ने कहा एक तरफ बच्चे मेरे दुआ देने का काम करते हैं, और जो दुआ देते हैं उनको फरिश्ता कहा जाता है, और दूसरे बच्चे धुआं निकालते हैं। एक दुआ देते हैं, दूसरे धुआं निकालते हैं। धुआं कहां से निकलता है? धुआं निकालने के लिए क्या होती है फैक्ट्री के अंदर, घरों में भी क्या बनाते हैं, चिमनी बनाते हैं, धुआं निकलता है चिमनी से, और चिमनी दिखाते हैं काली, काली काली चिमनी होती है ना, उससे धुआं निकलता है। जब उसमें जलता है तो भी धुआं निकलता है, और जब बुझ जाता है, कम जलता है, अधा जला होता है, तो और ज्यादा धुआं निकलता है, काला काला धुआं निकलता है। तो बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे अंदर अंदर ईर्ष्या में, घृणा में, द्वेष में, नफरत में, विकारों की आग में, क्रोध में, काम के विकार के नशे में जलते रहते हैं, और नहीं जलते हैं तो व्यर्थ संकल्पों में घुटते रहते हैं, इसका बहुत गहरा धुआं निकलता है, वायुमंडल खराब कर देते हैं। और जो बच्चे इन विकारों से निवृत्त होकर के दुआएं देते और दुआएं लेते हैं, वो फरिश्ते स्थिति का अनुभव करते हैं। मैं कौन हूं? चेक करो, पूछो अपने आप से, मैं धुआं तो नहीं निकालता हूं? धुआं निकालना माना वायुमंडल को व्यर्थ बनाना, भारी बनाना, इधर की बात उधर सुना देना, व्यर्थ वर्णन करना, चिंतन करना, इसने वो किया, वो ऐसा करता, एक दूसरे को ही देखते रहते, अपने को देखने का टाइम ही नहीं, किसी किसी के पास अपने को देखने का टाइम नहीं है, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर बहुत नजर है, उसने क्या खाया, उसने क्या पहना, वो कहाँ गया, उसने क्या किया, पर उसी को देखते रहेंगे और उसका वर्णन करते रहें, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, शक्ति वेस्ट, सब वेस्ट। तो क्या कर रहे हो? धुआं निकाल रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, दुआ दे रही हूँ या धुआं निकाल रही हूँ? अगर मैं फरिश्ते स्थिति में निरंतर रहती हूँ, लाइट स्थिति में रहती हूँ, स्वचिंतन में रहती हूँ, एक शुभ चिंतन चलता है, बाबा ने जो सुनाया वही चिंतन चलता है, ज्ञान चिंतन चलता है, शुभ चिंतन, सकारात्मक चिंतन चलता है, अपनी मस्ती में रहते हैं, तो हम दुआएं दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं। और सुख देने वाला माना दुआ निकालना, अंदर से दुआ देना। और अगर अशुभ चिंतन चलता है, नेगेटिव चिंतन चलता है, पर चिंतन चलता है, तो हम धुआं निकालते हैं, तो हम काली चिमनी हो गए, काले हो गए। इसलिए काली चिमनी बन करके नहीं रहना है। तो बाबा हम बच्चों को डबल लाइट, सफेद सफेद उड़ने वाला फरिश्ता बनाना चाहता है। सब मेरे बच्चे उड़ने लगे, फरिश्ते बन जाए, किसी भी व्यर्थ और व्यक्त बातों में न आए और न उसके प्रभाव में रहे। तो अभी क्या करना है? समय की सूचना है, बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिला रहा है, बाबा के संदेश इतने पावरफुल आ रहे हैं समय अनुसार कि अब मेरे बच्चे अंतिम समय के लिए तैयार हो जाएं, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में रहें, व्यक्त और व्यर्थ बातों से मुक्त रहें, कभी धुआं ना निकालें। तो देखना कि मैं अगर व्यर्थ चिंतन करती हूँ, पर चिंतन करती हूँ, दूसरों को देखती हूँ, परमत पर चलती, परमत कर मैं आत्मा, तो क्या होगा? मैं आत्मा इस वायुमंडल को भारी बना रही हूँ, इसका बोझ चढ़ता है, बहुत गुप्त बोझ चढ़ता, खुशी नहीं रहेगी, हल्कापन अनुभव नहीं होगा, योग नहीं लगेगा, ब्राह्मण जीवन में आनंद का अनुभव नहीं, खुशी नहीं, तो क्या हुआ? भारीपन है। ब्राह्मण बन गए लेकिन जैसे फंस गए पिंजड़े के अंदर, लेकिन बाबा ने इतनी अच्छी जीवन दी है, अमूल्य जीवन दी है, खुशनुमा जीवन दी है, तो हम सभी अपनी भाग्य को देखते हुए खुशनुमा जीवन का अच्छे से अच्छा अनुभव करें। जितना बाबा ने हम सबको दिया है, सचमुच राजकुमारों जैसी पालना दी है, इतना निश्चिंत जीवन दी है, कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सब जवाबदारियां बाबा ने ले ली, तो हम भी बाबा को बाबा की पालना का रिटर्न दें, और वो रिटर्न है अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लें। ठीक है, तो सभी का ध्यान है अपनी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का, समय की सूचना के अनुसार हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन जाए, और उसके लिए अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी मस्ती में रहो, बाबा जो कह रहा है वो मुझे करना है, बस आत्माएं क्या कह रही हैं वो नहीं देखना, आत्माएं तो अपना अपना प्रभाव डालने वाली होती, अच्छा भी प्रभाव डाल देती तो बुरा भी डाल देती, लेकिन बाबा कह रहा है, बाबा की मुरलियां जो हमको सुना रही हैं, सिर्फ बाबा की मुरलियों पर हमारा ध्यान हो, हमारा पुरुषार्थ अच्छे से अच्छा हो जाएगा। चारों प्रकार का हम पुरुषार्थ अगर अच्छा करेंगे तो इसकी प्रारब्ध बहुत अच्छी है। भविष्य प्रारब्ध छोड़ दो, भविष्य प्रारब्ध कोई देख के नहीं आया क्या होने वाली है, वर्तमान तो देख सकते हैं। बाबा कहता प्रत्यक्ष फल खाओ संगम युग पर, अगर पुरुषार्थ यथार्थ है तो सबसे पहली निशानी हमारा पुरुषार्थ यथार्थ है, तो उसका प्रत्यक्ष फल हमारी श्रेष्ठ जीवन, हमारी जीवन अच्छी से अच्छी हो जाएगी, खुशनुमा जीवन हो जाएगी, हल्कापन आ जाएगा। अच्छा पुरुषार्थ है तो उसकी सब निशानियां प्रत्यक्ष रूप में अभी जीवन में दिखाई देंगी। योग अच्छा है, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगे, धारणाएं अच्छी हैं तो चाल चलन व्यवहार अच्छा हो जाएगा, सेवा अच्छी कर रहे हैं तो दुआओं का स्टॉक जमा हो जाएगा, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान में अच्छे प्रवीण हैं तो समझ हो जाएगी तो रोशनी होगी, ठोकर नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे कहीं। तो अगर चारों अपने जो सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार हमारा यथार्थ पुरुषार्थ सर्वोत्तम पुरुषार्थ है तो मैं आत्मा उसकी प्रारब्ध का अभी अभी अनुभव करूं, भविष्य किसने देखा। इसलिए समय अनुसार अगर ज्ञान युक्त आत्मा हो, धोखे से बच जाऊं, भटकने से बच जाऊं, ठोकर खाने से बच जाऊं, क्योंकि ज्ञान है, लाइट है हमारे साथ, योग बाबा के साथ है तो हर कर्म युक्ति युक्त हो, यथार्थ हो, कर्म इंद्रियां शीतल हो, धारणाएं हमारी अच्छी हैं तो हमारा व्यवहार मिलनसार हो, मधुर हो, सबसे अच्छे से अच्छा हो, सेवाएं हम अच्छी कर रहे हैं तो दुआएं हो, खुशी हो, स्टॉक भरपूर, सेवाओं का रिटर्न, सबका सहयोग मिले और सबको सहयोगी बन जाओ, ठीक है, ये प्रारब्ध है। तो संगम युग पर पुरुषार्थ की प्रारब्ध का हरेक अनुभव करो, सिर्फ पुरुषार्थ कर रहा हूं पुरुषार्थ कर रहा हूं नहीं, प्रारब्ध कहां तक पाई है, ठीक है। तो ऐसा अनुभव करके अपने जीवन को सहज पुरुषार्थी, निरंतर पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी बना लो। ओम शांति।
वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटा